ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 11 श्लोक नंबर 21। इस अध्याय का नाम है वृत्रासुर के दिव्य गुण। हम लोग कहने मात्र केवल वृत्रासुर असुर के नाम से जाने जा रहे हैं इस प्रसंग में, लेकिन उनके दिव्य गुणों को वर्णन करने में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में अघाते नहीं, और जितनी इनकी ऊंची पहुंच है भगवान के चरणों में प्रेम की प्रीति है, उतना स्वर्ग के देवेश इंद्र की भी उतनी प्रीति भगवान के चरणों में नहीं है। इसलिए दिव्याति दिव्य इस वृत्रासुर के मनोरथ को हम लोग सुने कि उनकी मनोरथ किस प्रकार है। स्तुति करते हुए अपने मन की भावना को समर्पित कर रहे हैं इन श्लोकों के अंदर। जब तक हमारा मन भगवान के चरणों में नहीं लगेगा, तब तक हम इस शरीर से भी भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। भागवत में कई जगह इसका संकेत है कि मन को इस शरीर रूपी राजधानी को राजधानी का राजा कहा गया है। जहां हमारा मन जाएगा वहां इस शरीर को खींच के ले जाएगा। इसलिए मन को वहां हम लोग ले चले हैं। जिस बिंदु पर वृत्रासुर की दृष्टि टिकी हुई है, प्रयास करें हम लोग इन श्लोकों के भावार्थ को, सारांश को और इस प्रसंग को समझने का। तो इस दिव्य प्रसंग के सुनने में जिन भक्तों का यहां आगमन है राधिका रमन जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, समझने का प्रयास किया जा रहा है, तत्पश्चात हमारे जैसे व्यक्ति प्रयास कर रहा है बोलने का, श्लोक को हम लोग आवृत्ति करें। अहम् समाधाय मनः यथा आह न संकर्षणः तच्चरण अरविंदे तत्वज्र रहं लुलित ग्राम्य पासः गतिं मुने यामे अपविद्ध लोकः। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पतित पावन महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की। अहम् मैंने समाधाय स्थित करके मनः मन यथा जिस प्रकार आह कहा न हमारा संकर्षण भगवान संकर्षण तत्चरण रविंदे उनके चरण कमलों पर त्वत्वज्र तुम्हारे वज्र को रहा वेग से लुलित विच्छेदित ग्राम्य भौतिक आसक्ति पासह फंदा गतिम गंतव्य मुनेह नारद मुनि तथा अन्य भक्तों का यामि प्राप्त करूंगा। अपविद्ध त्याग कर यह लोक यह संसार जहाँ सभी प्रकार की नश्वर वस्तुओं का कामना की जाती है। अनुवाद मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिए, उसके बाद मेरे पीछे बोलिएगा। तुम्हारे वज्र के वेग से मैं भौतिक बंधन से मुक्त हो जाऊंगा और यह शरीर तथा भौतिक कामनाओं वाला यह संसार त्याग दूंगा। मैं भगवान संकर्षण के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करके नारद मुनि जैसे महामुनियों के गंतव्य को प्राप्त कर सकूंगा। कृपा करके इस अनुवाद को बोलिए। तुम्हारे वज्र के वेग से मैं भौतिक बंधन से मुक्त हो जाऊंगा और यह शरीर तथा भौतिक कामनाओं वाला यह संसार त्याग दूंगा। मैं भगवान संकर्षण के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करके नारद मुनि जैसे महामुनियों के गंतव्य को पार कर सकूंगा। अहम समाधाय मनोजथा संकर्षणस्तच्चरणारविन्दे त्वद्वज्रहम लूलितग्राम्य पाशो गतिम मुनिरयाम अविविद्ध लोक। यह वृत्रासुर जी की स्तुति का श्लोक है। इससे पहले दो स्तुति के श्लोक हो चुके हैं। ऐसे तो इससे पहले और श्लोक वृत्रासुर जी ने बोला है दो श्लोकों से पहले भी, लेकिन वह श्लोक स्तुति नहीं है। वह इंद्र की कपटपूर्ण व्यवहार और इंद्र की धिकार युक्त शब्दों में वृत्रासुर ने उनको संबोधन करते हुए कहा है। लेकिन अब अपने मरने की स्थिति को पूर्ण रूप से तैयारी करके और 19 श्लोक में यह बताया गया है कि भगवान विष्णु ने तुम्हें यह मनोनीत किया है, चुन दिया है, कह दिया है कि मैं तुम्हारे हाथ से ही मरूंगा। तो उस स्थिति की तैयारी करके और वृत्रासुर जी अब अपने मन को पूर्ण रूपेण कृष्ण अर्पित करके उनसे यह श्लोक स्वयं भगवान की साक्षात प्रत्यक्षीकरण करते हुए भगवान से यह श्लोक कह रहे हैं। क्योंकि इंद्र के समक्ष खड़े हैं, लेकिन इंद्र के शकल को न देख करके भगवान के चरणों में अपने मन को लगा करके भगवान को देख रहे हैं। हर जगह गीता हो, भागवत हो, चैतन्य चरितामृत हो, मन को कैसे समावेशित किया जाए भगवान के चरणों में बहुत जगह बताया गया है। और हम लोग इस प्रसंग से तो खास यह सीख सकते हैं कि मन को कहां रखना चाहिए। पहले शब्द में ही अपने को संकेत करते हुए वृत्रासुर कह रहे हैं अहम समाधाय, मैं अपने मन को केंद्रित कर चुका हूं। मन अगर अडिग भगवान के चरणों में लग जाता है तो इतने बड़े शरीर से हम भगवान की सम्यक रूप से सेवा कर सकते हैं। नहीं तो इतने बड़े शरीर से सेवा करने के बाद भी अगर हमारा मन यत्र तत्र विचरण कर रहा है तो जिस स्थिति को प्राप्त करना चाहिए सेवा प्राप्त सेवा करके उस स्थिति को हम नहीं प्राप्त कर सकता। यहां अपने मन को केंद्रित करके बोल रहे हैं सम आदाय, पूर्ण रूप से अपने मन को केंद्रित करके तब कह रहे हैं यथा आह। अपने मन को कहां लगाए हैं वृत्रासुर जी, तो अपने आराध्य देव का नाम भी रख रहे हैं संकर्षणस्त तत् चरणारविंद। भगवान संकर्षण के चरण रविंद में अपने मन को लगाए हुए हैं। ऐसे शब्द पिछले वाले श्लोकों में भी आया है, श्लोक नंबर 19 में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वृत्रासुर जी अपनी मन की स्थिति को पूर्ण रूप में कृष्ण के चरणों में निवेशित करके इन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। जब तक हमारा मन किस स्थिति में है, अगर केंद्रित नहीं होता भगवान के रूप में, भगवान के लीला में, भगवान के कथा में, तब तक हम भगवान के विषय में कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ बोल ही नहीं सकते, देखते हुए भी हम उनको देख भी नहीं सकते। इसलिए मन को कैसे भगवान के चरणों में लगाना है या लगने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है, इसी स्कंद के छठे स्कंद के प्रथम स्कंद में हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले छठे स्कंद के पहले अध्याय का 19 श्लोक है। ऐसे तो कथा सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, लेकिन प्रसंग वहां आया है कि जमदूत और विष्णु दूतों में वार्तालाप हो रही है, जहां यह बताया जा रहा है जमराज जी के द्वारा कि जो व्यक्ति अपने मन रूपी मधुकर को भगवान के चरणों में निवेशित कर लेता है तो वह जमराज के पास भृतस तदभटान, तदभटान का अर्थ है जमराज के दूत, मतलब जमराज के पास से वो अपने आप को छुड़ा लेता है। कैसे छूटेगा तो छूटने का कारण बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने सकृत मनः कृष्ण पदारविंदयो, सकृत का अर्थ है कि सम्यक रूप से जिसने अपने मन को कृष्ण के चरणों पर एकत्रित कर दिया है, वहां अपने मन को लगा दिया है, तो वैसे व्यक्ति कभी भी जमराज के पास में नहीं आता। जमराज जी स्वयं कह रहे हैं कि वो मेरे पास से वो परे हो जाता है, और इतना तक ही नहीं, एक विशेष बात और उस श्लोक के अंदर कहते हैं कि वैसे व्यक्ति जिस व्यक्ति का मन भगवान के चरणों में एकत्रित हो चुका है, लग चुका है, वैसे व्यक्ति के परछाई तक को भी टच करने का, स्पर्श करने का तुम लोगों का अधिकार नहीं है। अपने दूतों से कह रहे हैं, आप सोचिए कि कितने शक्तिशाली व्यक्ति हो जाता है केवल भगवान के चरणों में अपने मन को लगाने से। इतनी कथाएं चल रही हैं सर्वत्र, लेकिन कितने लोगों का मन भगवान के चरणों में लग रहा है? क्योंकि जिस भाव से, जिस स्थिति से मन को लगाने का प्रयास करना चाहिए भगवान के चरणों में, वो नहीं लगाया जा रहा है। नहीं तो अगर मन एक बार अगर भगवान के चरणों को ठीक से पकड़ ले तो किसी के छुड़ाने से भी नहीं छूट सकता है। हम लोग पढ़ते हैं कि सूरदास जी भगवान को चैलेंज देते हैं कि भले मैं इस हाड़ मांस के आंखों से आपको नहीं देख सकता हूं, या हम इन कर्म इंद्रियों बाजुओं से मैं आपको नहीं पकड़ सकता हूं, बांध नहीं सकता हूं, लेकिन हे मेरे प्रिय, आप मेरे हृदय से अगर छूट करके जाए तब मैं मानूंगा कि नहीं, मुझको आपने छोड़ दिया या मैंने आपको छोड़ दिया। कृष्ण वचन दे चुके हैं इसी भागवत में कि जो व्यक्ति मेरी कथा सुनने का केवल इच्छा करता है तो उस व्यक्ति के हृदय में मैं बंदी बन जाता हूं। तो जो भक्त अपने मन को, अपने शरीर को, अपने वाणी को भगवान के चरणों में लगा चुका है तो उसके हृदय से भगवान कैसे निकल सकते हैं, वो कैसे भगवान को छोड़ सकता है? इसीलिए भगवान जो त्रिभंग मुद्रा ललित में खड़े होते हैं तो कृष्ण के भक्ति को प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण को एक बार प्राप्त कर लेता है, एक बार कृष्ण को अपने हृदय में बिठा लेता है तो उस हृदय से कृष्ण निकलते नहीं है, क्योंकि इतने तीन जगह से टेढ़े हैं कि फंसे ही रहते हैं उसी हृदय के अंदर। केवल एक बार अपने मन को ठीक से उनके चरणों में निवेशित करना है। प्रत्यक्ष अनुभूति करते हुए, अपने मन से, अपने आंखों से भगवान को देखते हुए ये वाक्य बोल रहे हैं, लेकिन शब्द है समाधाय। अहम शब्द हम लोग भी अपने लिए कर सकते हैं कि हम भी सम्यक रूप से भगवान के चरणों में अपने मन को लगाए, स्थित करें। लेकिन मन ही यह हम लोगों के बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का भी कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षे बंधाय विषया संग बंधाय निर्विषया मन। मन से ही हम बनते हैं और मन से ही छूट सकते हैं। इस श्लोक के अनुवाद में इस शरीर के विषय में बताया गया कि यह शरीर के चलते, इस शरीर के कारण ही हम लोग इस संसार में बार बार आते हैं। रूपा जी अनुवाद में लिखते हैं कि वृत्रासुर यह कह रहे हैं कि मैं भौतिक बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। कब? जब तुम्हारे वज्र के द्वारा मेरी हत्या की जाएगी, मारी जाएगी, मुझे मारा जाएगा, तब मैं कैसे शरीर को छोड़ूंगा? तो यहां जब बता रहे हैं कि भौतिक बंधन से मुक्त हो जाऊंगा और यह शरीर तथा भौतिक कामनाओं वाला यह संसार त्याग दूंगा। वृत्रासुर यह कह रहे हैं कि यह शरीर और इस शरीर के अंदर जो कामनाएं हैं, इसी दो चीजों को पूरा करने में हम लोग इस श्रृंखला को बनाए रहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को बनाए रखते हैं। क्योंकि शरीर की ही मेंटेन करने में जितने भी हमारे समय हैं, जिससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इस शरीर को ही मेंटेन करने में जो दिव्य समय है उसको हम व्यर्थ गंवा देते हैं। जबकि भागवत कहता है कि काये कानव नित्यता, तुम उस शरीर के पीछे क्यों दीवाने हो जिसका कोई सत्य नहीं है, सत्यता नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि सत्य रहेगा। ये प्रति क्षण बदल रहा है, रोज बदल रहा है। तो तुम ऐसे कर्म करो इस शरीर से कि अपने को शरीर अगर मानोगे तो इसके अंदर कामना भरी पड़ी है और उस कामनाओं की तृप्ति में ही लगे रहोगे, जिससे तुम भगवत प्राप्ति के जो साधन है उनको भूल जाओगे। अगर हम शरीर के धरातल से जब तक ऊपर उठ करके भगवान की प्राप्ति हेतु कोई पवित्र कार्य नहीं करते हैं, तब तो हमारी कामनाएं हमें बांधकर यहीं रखेंगे। और कामना के कारण ही इस संसार में और हम लोग गहराई में चले जाते हैं। प्रतिदिन हम लोग गहराई के अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं। अगर शरीर से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, भगवत प्राप्ति की तरफ अपने मन को मोड़ते हैं, तो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में हम कम समय व्यतीत करते हैं। यही कारण है कि जो भक्ति के साधनों में बड़े चढ़े साधक जन हैं, वो शरीर पर ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके कारण उनके शरीर बीमारियों से कभी कभी ग्रसित हुए देखा जाता है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो कहते हैं कि इसी शरीर के कारण तो हम फंसे हैं इस संसार में, और जो हमारे पास समय है इसको भी अगर हम इसकी मेंटेन करने में लगा देते हैं तो हम भजन नहीं कर पाएंगे। अरे तो मर ही रहा है, मरेगा, रोज मर रहा है, मर ही जाएगा, एक दिन छोड़ ही देगा। इसलिए भजन कर लिया जाए, चाहे जितनी भी बड़ी बीमारी लगे लेकिन भजन कर लिया जाए। भूख की चिंता नहीं है, कपड़े की चिंता नहीं है, ऐसे ऐसे व्यक्ति पड़े हैं। भावना इसी श्लोक को पढ़ने के बाद आप देखिए कि हैं असुर योनि में वृत्रासुर जी, लेकिन भावना कितनी पवित्र है, कितनी गहराई में उनकी मनोवृत्ति उनका मनोचित लग चुका है कि यह कामना कर रहे हैं कि मैं उस शरीर को छोड़ दूंगा जिसके कारण बंधन लगता है, जिसके कारण हमें इसे भौतिक शरीर में आना पड़ता है, और वैसी कामनाओं का हम परित्याग कर देंगे आप जब हमारी हत्या कर देंगे कि जिन कामनाओं से हम फिर इस संसार में बार बार न आए। इस श्लोक में तो इस प्रकार की स्तुति कर रहे हैं वृत्रासुर जी, लेकिन आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे तो खुद कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे बार बार अभी इस संसार में मुझे डालो, मैं आता रहूं, लेकिन प्रभु इतना जरूर कृपा करना कि मुझे वैसे जगह जन्म देना, वैसे जगह रखना जहां आपका प्रति क्षण स्मरण हम कर सकें। आपके चरणों में लगे हुए भक्तों की संगति मिल सके, मुझे यहां आने से घबराना नहीं है, लेकिन घबराहट इस बात से है कि आपसे जो विमुख व्यक्ति हैं उनकी संगति मुझे नहीं देना। कितनी पवित्र भावना है, कितनी पवित्र मनोरथ है। हम लोग भागवत में पढ़ते हैं अक्रूर जी का मनोरथ, कंस ने भेजा कृष्ण बलराम को लाने के लिए, लेकिन कंस के भेजते ही केवल कहते ही अक्रूर जी की जो मनोवृत्ति थी कृष्ण बलराम के चरणों में लग गया और वहीं से उन दोनों के चरणों का स्मरण करते हुए अक्रूर जी चल देते हैं कृष्ण और बलराम को लाने के लिए और अपने मन से स्तुति करते हुए उनका दर्शन करते हुए उनको प्रणाम करते हुए उनकी संगति प्राप्त करते हुए पहुंचते हैं नंदग्राम, मथुरा से नंदग्राम पहुंचते हैं। और ले जाने के लिए आ रहे हैं लेकिन मनोरथ इतनी पवित्र है, भेजा कंस, कंस का उद्देश्य कुछ और था लेकिन अक्रूर जी की मनोरथ को देखिए कि वहीं से अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। इस प्रकार की ऊंची मनोरथ करना है कि हे प्रभु, मैं इस भौतिक संसार में, इस भौतिक शरीर में तो जरूर हूं लेकिन हमारी जो मनोकामना, जो मनोरथ है उसको आप पवित्र बनाइए, गुरु के प्रति, साधु के प्रति, भगवान अपने चरणों के प्रति ऐसी प्रीति प्रदान करो कि हमारा अन्यत्र या मन या शरीर और बाणी, काये मनसा और बपुसा, इन तीनों की स्थिति आपके चरणों में लगी रहे। कहा जाता है, अन्य विद्वानों ने लिखा है कि जिसका मन जाकी जासना ताही की उपासना, अगर जिससे हमारा प्रीति हो चुका उसी को प्राप्त करने की वासना हमारे मन में लग जाती है, तो अगर हमारी कामना है कि कृष्ण के चरणों में हमारा मन लगे तो जो कृष्ण प्राप्ति की जो वासना है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। वासना शब्द कोई खराब शब्द नहीं है लेकिन कहां उसको प्रयोग में लाना है, कहां उसको ठिकाना है, अपने ऊपर निर्भर करता है। अपने मन को उस स्थिति में डालना है, वहां पहुंचाना है जहां कि हमारी पूरी की पूरी मन स्थिति उन्हीं के चरणों में बंधा रहे। भागवत के दसवें स्कंद के एक श्लोक के अंदर बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने मन मधुकर को एक बार भगवान के चरणों में लगा देता है उसे शोक, भय, मोह या संसार की जो बांधने वाली जंजीरें हैं वो उसको नहीं बांध सकते, क्योंकि वो अपने मन रूपी भंवरे को भगवान के चरणों में बांध चुका है। इसलिए जो संसारिक, जो भौतिक बंधन है वो उसे नहीं बांध पाती है। कई ऐसे श्लोक हैं जिसमें केवल मन को भगवान के चरणों में लगाने को कहा जा रहा है और रिजल्ट ऐसा होता है कि अगर हमारा मन भगवान के चरणों में लग गया तो हम इस संसार के नहीं होंगे। अब इसके अंदर एक ग्राम पास शब्द है, ग्राम पास शब्द का अर्थ है जिनकी मनोवृत्ति पूर्ण रूप से संसारिकता में लिप्त हो, ग्राम वार्ता में लगा हो, ग्राम कथा में लगा हो, ग्राम कार्य में लगा हो, मतलब केवल अपनी इंद्रियों के तृप्ति में ही लगे हो, वैसे बंधन से मैं छूट जाऊंगा। वृत्रासुर जी यहां कह रहे हैं, तुम अगर मुझे मार देते हो तो मैं अपने मन को वहां लगा चुका हूं कि ग्राम में पास में मैं फिर फंस नहीं सकता, फिर इस भौतिकता में मैं आ नहीं सकता, इस भौतिक जीवन में लिप्त हो नहीं सकता। इसलिए हर व्यक्ति को इन शब्दों से, ग्राम कथा हो, ग्राम वार्ता हो, ग्राम पास हो, इन शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब तक कृष्ण वार्ता नहीं है, कृष्ण यशः वार्ता नहीं है, कृष्ण रूपः वार्ता नहीं है, कृष्ण भक्त संग वार्ता नहीं है, तब तक हम ग्राम्य कथा में ही है, ग्राम्य पास में ही है। एक साधु एक से मिले तो भगवत कथा को दोहराना चाहिए, नहीं तो मंदिर में रहने के बाद भी हम ग्राम्य पास में ही हैं। किसी न किसी शब्द पर, किसी न किसी कथा पर, किसी न किसी अपने आचार्यों के जीवन चरित्र पर अपने मन को टिकाए रखना चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरे कथा से बढ़कर के मेरे भक्तों की कथा है। और जो भगवान को जीत नहीं सकता कोई, वैसे भगवान को भगवान के भक्त लोग जीत लेते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी अपने स्तुति में कहते हैं, भागवत के दशम स्कंद के 14वें अध्याय के अंदर ब्रह्मा जी ने कहा है कि जो आपको किसी तरह भी जीता नहीं जा सकता, लेकिन भक्त लोग आपको जीत लेते हैं। एक ही उपाय है भगवान को जीतने का या भगवान को अपने पास रखने का, कि उनके विषय में जितना सुना जाए वो कम है, जितना बोला जाए वो कम है, जितना भगवान का दर्शन किया जाए वो कम है। क्योंकि भागवत के अंदर इस शरीर की फलश्रुति के एक एक अंगों की गणना अम्बरीश महाराज ने भी गिनती कराया है, और भागवत के दशम स्कंद में भी कई श्लोकों के अंदर शरीर के एक एक अंगों की फलश्रुति को बताया गया कि कैसे हम भगवान को लगा सकते हैं, भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। तो इस शरीर का जो राजा मन है, उसको हम भगवान के चरणों में रखने का प्रयास करें। अब प्रभुपाद जी एक अनुवाद के अंदर भी एक लाइन और ग्रहणीय विषय है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैं भगवान शंकरषण के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करके, वृत्रासुर की वाणी को व्यक्त कर रहे हैं, और वृत्रासुर जी की ये वाणी है कि मैं वैसे भगवान के भक्तों की स्थिति को मैं प्राप्त करूंगा या भाव को प्राप्त करूंगा, जैसे नारद आदि भक्तों ने अपने हृदय को जिस तरह भगवान के चरणों में हमेशा अनवरत लगाए रहते हैं। नारद शब्द का एक व्यक्ति अर्थ भी बता रहे थे कि जो भगवान को दे सकते हैं उनके पास देने के लिए और कुछ नहीं है। जो भगवान को दे सकते हैं, जो भगवान की कथा को दे सकते हैं, नारद शब्द का अर्थ है कि जो भगवान को देते रहते हैं, तो उस भाव को प्राप्त करूंगा। अर्थात हे इंद्र, तुम स्वर्ग के राजा हो, लेकिन नारद जी जैसे भक्तों के हृदय के भाव को आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं करूंगा। आप मार भी दोगे तो मैं ऐसे महान भक्तों के पथ पर चल करके आया अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित करके उस भाव को प्राप्त करूंगा। यहां नीचे के लाइन से यह संकेत किया जा रहा है कि हमें भगवत अनुरागी भक्तों के पथ पर चलना चाहिए। मेरे गुरु महाराज तो कहा करते हैं कि अगर किसी को कुछ ग्रहण करना हो, भगवान के विषय में कुछ सुनना हो, तो अपने को अज्ञानी प्रदर्शित करो कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। विद्वान समझ करके तुम कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक हम अज्ञान प्रदर्शित नहीं करेंगे कि हमें कुछ नहीं आता, तब तक कुछ हमारे हृदय के अंदर जाएगा भी नहीं। कोई बताएगा तो अपने अंदर वह भाव है कि जो उत्तर दिया जा रहा है वो घुसेगा ही नहीं। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर क्या लिखते हैं हम लोग समझने का प्रयास करें। श्रील प्रभुपाद महाराज की, अहम समाधाय मनः शब्दों से सूचित होता है कि मृत्यु के समय सबसे आवश्यक कर्तव्य है मन को केंद्रित करना। लेकिन यह भाव आएगा कैसे? जीवन भर तो हमने 3 को 13 बनाने में लगा रहा, तो अंत में भगवान के चरणों में मन लगेगा कैसे? इसलिए जीवन भर भगवान के भक्ति की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करनी पड़ेगी। बचपन से ही कैसे भगवान को प्रणाम करना है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान को हमें कैसे जगह रखना है, क्या करना है, उनके लिए सारी चीज शुरू से अगर हम नहीं करेंगे तो ये भाव हमारे अंदर अंत में नहीं आ पाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस करने की, अभ्यास करने की जरूरत है। सोते, खाते, पीते, उठते, बैठते, गिरते, किसी भी समय हमें भगवान का स्मरण आ सके, ऐसी आदत डालना है, तब हमारा मन भगवान के चरणों में केंद्रित होगा। मरने की तैयारी सीख चुकनी है सुन करके कथा से। अंते नारायण स्मृति कैसे बनेगी? क्योंकि प्रयास करेंगे तब। यदि मनुष्य श्री कृष्ण, प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, कितनी गहराई में प्रभुपाद जी घुसे हैं उसको सुनने का प्रयास कीजिए, कि यदि मनुष्य श्री कृष्ण, विष्णु, शंकरसण या किसी विष्णु मूर्ति के चरण कमलों में अपना मन स्थिर केंद्रित कर सकता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। मन को कहां लगाना है? प्रभुपाद यहां लिखते हैं कि भगवान के किसी भी अवतार को, विष्णु का कोई भी मूर्ति हो जिसकी आप आराधना कर रहे हो, उसी पर अपने मन को केंद्रित करो। तब तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त की यह वाणी है। अगर तुम भगवान के किसी भी रूप में अपने मन को लगा रहे हो और उनके विश्वसनीय भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, सेवक बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। वृत्रासुर ने इंद्र से कहा कि जब अपने मन को संकर्षण के चरणारविंद में स्थिर किए हो तो वह अपना वज्र छोड़े। प्रभुपाद जी यह लिख रहे हैं कि वृत्रासुर इंद्र से यह कह रहे हैं कि अब मेरा मन भगवान संकर्षण के चरणों में केंद्रित हो चुका है, या तुम तब बाण छोड़ना जब मैं अपने मन को संकर्षण के चरणों में लगा चुका रहूंगा। मरने की ऐसी अभिलाषा, इस प्रकार की मनोरथ, जीने और मरने की दोनों कला भागवत सिखाता है। अगर जिए तो कृष्ण के लिए जिए, नहीं मरे तो कृष्ण के स्मरण करते हुए मरे। कई श्लोकों में कहा गया है कि जो यह शरीर जिसकी पोषण के लिए, जिसके पालन के लिए हम लोग कौन से गलत कार्य नहीं करते हैं, और इससे अगर कृष्ण भक्ति नहीं हो रही है, भगवान की भक्ति नहीं हो रही है, तो इस शरीर को रखने से केवल पाप बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अपने बंधन को और मजबूत बना रहे हैं। भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त वज्र से उसकी मृत्यु निश्चित थी। रूपा जी लिखते हैं कि वृत्रासुर की मृत्यु निश्चित थी वज्र से, जो भगवान के द्वारा मनोनीत किया गया था, चुना गया था, और सारे उपाय भगवान ने बताया था, और तपस्या और भक्ति से पूर्ण हड्डी से वह वज्र बना, उससे वृत्रासुर की मृत्यु है। नन्ने व शक्रो शक्र तेजसा हरिर दधीचे तपसा से तेजित। दधीची ऋषि के तपस्या से और उनके तेज से और उनकी पूर्ण शक्ति से वह वज्र बना था, जिससे वृत्रासुर की मृत्यु। इसलिए उस बाण को अमोघ बाण कहा गया, मई मोघम कहा गया। वृत्रासुर कहते हैं कि मुझे मारने के लिए भगवान ने खुद ये बाण को बनवाया है और मैं इसी बाण से मरूंगा और किसी बाण से नहीं मरूंगा। अतः वृत्रासुर ने इंद्र से प्रार्थना की कि वह तुरंत अपना वज्र छोड़े, वह अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण रविंद में स्थिर करके स्वयं तैयार हो गया। भक्त अपने इस भौतिक शरीर को त्यागने के लिए सदैव तैयार रहता है, जिसे यहां पर ग्राम्य पास अर्थात भौतिक आसक्ति का फंदा कहा गया है। शरीर का अर्थ है शरीर के उपज भी, अपना शरीर ही नहीं, इस शरीर से हमने जिसको पैदा किया, जिसको हमने अपना बनाया, जिसको हमने अपना मान लिया, सब फंदा पैदा करते हैं। अब सोचिए कि एक अकेला शरीर होता और इसका बंधन होता तो आसानी से काटा भी जा सकता था, छोड़ा भी जा सकता था, लेकिन शरीर के संबंधी सब अपने अपने मजबूत बंधन से हमको और बांध रहे हैं और फंदा लगा रहे हैं। कैसे हम लोग इस फंदे को छोड़ सकते हैं आसानी से? इसलिए ग्राम पास से छूटने का एकमात्र उपाय इन श्लोकों में या भागवत के एक एक पन्ने में यही बताया गया है कि जब तक कृष्ण अर्पित स्थिति में हम अपने मन को नहीं रखते, कृष्ण के चरणों में नहीं रखते, तो हम इस ग्राम पास में पड़े ही रहेंगे। किसके किसके मेंटेनेंस में लगे हुए हैं हम लोग और जप नहीं हो पाता। शरीर यहां है लेकिन मन कहीं और है, कछुए की भांति कछुआ जल में रहता है लेकिन अपना अंडा जो देता है वो पृथ्वी पर देता है, जल से बाहर। जल में रहते हुए अपने अंडे का उस सिंचन कर लेता है, सेवन कर लेता है, पालन कर लेता है। उसी स्थिति में तथाकथित साधु वे जिनका मन अगर इस पास से छूटने का कभी प्रयास नहीं कर रहा है, साधुओं की संगति में रुचि नहीं हो रही है, तो हमारी स्थिति बहुत खतरनाक है। हम लोग इस ग्राम में पास से कभी छूट नहीं पाएंगे। छूटने के लिए भी भगवान से हम प्रार्थना करें कि हे भगवान ऐसी कृपा करो, ऐसा समय या ऐसा अवसर प्रदान करो जिससे हम इस बंधन से छूट सके। लेकिन हम लोग नित्य प्रतिदिन प्रार्थना फंसने के लिए कर रहे हैं, छूटने के लिए नहीं। भगवान हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, आगे का श्लोक आएगा जिसमें वृत्रासुर कहते हैं कि हे भगवान आप अपने अकिंचन भक्तों को वैसी चीज नहीं देते कि जिससे वो फंस जाए। न राति यद्वेग उद्वेग आदय मर्द कलिर व्यसना संप्रयास, कि आप अपने भक्तों को वैसी चीज नहीं देते जिससे उनको दुख हो, क्लेश हो, मोह हो, जिसमें वो फंस जाए। लेकिन कहना तो पड़ेगा हमें कि भगवान हमें छुड़ाओ, अपने मन को एक बार भगवान के चरणों में अर्पित करके कहना तो पड़ेगा, वाणी को भी अर्पित करनी पड़ेगी कि भगवान मुझे छुड़ाओ। लेकिन हम लोग नित्य प्रतिदिन भगवान के सामने फंसने के लिए प्रयास करें तो कहां से हमारा ये फंदा कट पाएगा। हे भगवान हमें मुझे ए दे दो, ए दे दो। अरे भक्ति मांगो। भागवत के महात्म्य में बताया गया है तो उथाय प्रणवेद यो वै श्रीमद भागवतम यथा धनु पुत्रांश तथाम दाराम भक्तिम च प्रददामि हम। अगर भागवत से प्रार्थना करते हो कि हे भगवान मुझे धन दे दो, पुत्र दे दो, स्त्री दे दो, तो यह ग्रंथ वो भी देगा, भगवान वो भी चीज देंगे। लेकिन लास्ट में वो शब्द रखा गया कि भक्तिम च प्रददामि हम, मुझे भक्ति दो, क्योंकि इन चीजों से आगे वाले चीजों से बंधन लगेगा। लास्ट में रखा गया कि भक्ति में च प्रददा में हम, भक्ति दो जिसे इन बंधनों से छूट सके। छूटने के लिए प्रार्थना करने हैं। यह शरीर तनिक भी अच्छा नहीं है, प्रभुपाद जी के शब्द कि यह शरीर तनिक भी अच्छा नहीं है, जिस सुंदरता पर लटू हुए हैं हम लोग, जिसको मेंटेन करने में सारा जीवन का समय अव्यय कर रहे हैं। एक कवि ने तो एक जगह लिखा है कि शरीर को कितना भी सफाई कीजिए लेकिन जब नौ द्वार गंदा कर रहे हैं तो दो हाथ कितना सफाई करेगा, एक तरफ सफाई करेगा दूसरा गंदा हो जाएगा। इसलिए मन की धुलाई करते रहो, मन को पवित्र बनाए रखने के लिए मन को केंद्रित अगर कृष्ण के चरणों में रखे हो तो सारी गंदगी अपने आप दूर हो जाएंगी। मन की मलिनता शरीर को भी गंदी कर देती है। मन जिसका मलिन है इस शरीर को भी गंदा कर लेगा, क्योंकि इतने बड़े शरीर को मन खींच करके ले जाकर के ऐसे गंदे जगह पर गिरा देगा जहां ये शरीर भी गंदा हो जाएगा। मन गंदा हुआ तो शरीर भी गंदा हुआ। यह शरीर भी तनिक अच्छा नहीं, यह तो मात्र संसारिक बंधन का कारण है। शरीर, अपना शरीर और शरीर के उपज, ये सब बंधन के कारण है। अहम ममेति, मैं और मेरा, यही इस संसार में हम लोगों को रखा है। मम शब्द अगर कृष्ण के लिए कहें कि कृष्ण मेरे हैं, तो हम छूट सकते हैं, लेकिन कृष्ण को हम लोग अपना नहीं कहते। कृष्ण को अपना बनाओ। दुर्भाग्यवश शरीर के नाशवान होने पर भी मूर्ख तथा दुष्ट पुरुष शरीर पर पूर्ण आस्था रखते हैं और कभी भी भगवान के धाम जाने के इच्छुक नहीं रहते। कहां फुर्सत है प्रभु जी, छुट्टियों में भी मैं नहीं जा पाया वृंदावन, या और किसी धाम में नहीं जा पाया, बच्चे घर में है कैसे छोड़ के जाए। प्रभुपाद जी उनको धिक्कार रहे इस लाइन में कि समय निकालो, जैसे मौका मिल जाए। मैं तो कभी अपने ऊपर हंसता हूं कि मीरा बताए या बिना कोई बहाना करके ही निकल जाते हैं वृंदावन या कहीं, जाने के बाद बताया जाता है कि नहीं प्रभु जी मैं यहां हूं। रुक्मिणी कृष्ण प्रभु को तो मैं कितने बार फोन भी किया बाद में कि प्रभु जी मैं यहां हूं, मैं आया हूं, मैं कल आऊंगा। ठीक है, पहुंचने के बाद आप बता रहे हैं। मन अगर भाग रहा है वृंदावन तो पहुंचो, गलत जगह तो नहीं जा रहा है। प्रयास करना है कि वहां जाने के बाद केवल उस भूमि का स्पर्श, उस भूमि का रस, उस भूमि में रहने वाले व्यक्ति, उनकी महिमा को सुनने, पढ़ने और स्पर्श करने का प्रयास करो। स्पर्श करने का मतलब है कि साधु के वाणी को सुनने, दर्शन करो तो दूसरे आंख से। क्योंकि वृंदावन को प्रणाम करने के मंत्र में बताया गया है कि भगवान का केवल वहां एक ही काम है, रमयति स सदा पालयन यत्र गोपी। जो गाय चराने में और गोपियों के साथ लीला करने में उनका समय बीतता है और उनका वहां दूसरा कुछ काम नहीं है। स्वरित मधुर वेणु वर्धयन प्रेमरासे, और उनका काम क्या है कि बस केवल बांसुरी बजाते रहते हैं। वहां पहुंचने के बाद इन सब चीजों को देखना, प्रभुपाद से, प्रभुपाद के कृपा पात्र गुरुजन से, भगवान से, उनके अनुयायी भक्तों से यही प्रार्थना करना है कि प्रभु ये भाव इसी जीवन में नहीं जन्म जन्मांतर तक ये बना रहे। वृत्रासुर के शब्दों में कि यह मन केवल वहीं केंद्रित रहे जहां कृष्ण दिख रहे। हरे कृष्ण, मैं तो उधर देख ही नहीं रहा। 9:15 हो गया, 9:20। कोई प्रश्न है? मुखारविंद से अगर भगवान का चरण है तभी मुख है। भगवान के मुख को हम देखना सीधा पसंद करते हैं, लेकिन विचार करना है कि मुख से पहले तो और कुछ है उनका। उनका स्वरूप है तो केवल मुख ही केवल, और वास्तव में देखा जाए तो प्रार्थना या प्रेम करने की जो नियम बताए गए हैं शास्त्रों में या आचार्य ने बताया है, भगवान का ऐसे सर्वांग आकर्षित है लेकिन मुख तो है ही, लेकिन चरणों में देखने की जो स्थिति है, चरणों में अगर चरणों को देखते हैं और उन चरणों में प्रार्थना करते हुए उन मुख को देखते हैं तो और रस की अनुभूति होती है। चरणों की प्रार्थना जितनी, चरणों की में प्रेम करने के जितने तरीके बताए गए हैं, भगवान के मुख का वर्णन उतने श्लोकों में नहीं है। प्रीति झुकने से होता है, तो झुके हम कहां, निवेदन कहां करें, भगवान के मुख से प्रार्थना नहीं कर सकते, प्रार्थना मुख से नहीं कर सकता। प्रार्थना करने का कोई स्थान है, झुकने का कोई स्थान है, झुक करके हम लोग भगवान को मुख को प्रणाम नहीं करते, भगवान के चरणों को प्रणाम करते। तो प्रार्थना करने का एक जगह होता है, स्थान होता है जहां से शुरू होता है। तो हम चरण से भगवान का स्मरण कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, तब उनके मुख को जिस स्वरूप में है उनको देख सकते हैं। और कोई अन्य उपाय अन्यत्र हो तो नहीं, लेकिन जहां तक हमने सुना है कि चरणों में, चरणों से प्रार्थना करने का अर्थ यह है कि हम वहां से देखना शुरू किए, उसके बाद हम पहुंचे। और कोई ग्रंथरा श्रीमद भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, गौर हरि प्रमानंदे।